आज अनाथ आश्रम की प्रबंधक कमेटी के साथ एक अहम मीटिंग रखी गई थी। आयान और जोया तय समय पर वहां पहुंच चुके थे। ये कमेटी आयान को पहले से जानती थी क्योंकि वो इससे पहले भी अनाथ आश्रम के लिए एक बड़ी डोनेशन दे चुका था। उसकी दरियादिली और नेक इरादों की चर्चा पहले ही हो चुकी थी, इसीलिए आज की मुलाकात सभी के लिए उम्मीदों से भरी हुई थी। मीटिंग शुरू होते ही आयान ने साफ और आत्मविश्वास से अपनी बात रखी। उसने कहा, मैं सिर्फ आर्थिक मदद तक सीमित नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूं कि यहां बच्चों के लिए बेहतर सुविधाएं हों। जहां कंस्ट्रक्शन की जरूरत है वहां नए कमरे बनाए जाएं, बच्चों के रहने और पढ़ने के लिए साफ सुथरी जगह हो। आगे चलकर मैं यहीं एक छोटा सा स्कूल भी बनवाना चाहता हूं, ताकि बच्चों को बाहर भटकना न पड़े। आयान की बातें सुनते ही कमरे में खुशी की लहर दौड़ गई। कमेटी के सदस्यों के चेहरे पर संतोष और उम्मीद साफ झलक रही थी। जोया चुपचाप आयान को देख रही थी, उसकी आंखों में गर्व था। लेकिन तभी कमेटी के प्रधान मिस्टर सहगल ने गहरी सांस ली और बोले, आयान जी, आप जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। सच कहूं तो हम सब आपके आभारी हैं, मगर एक समस्या है। आयान का चेहरा गंभीर हो गया। कौन सी समस्या? उसने तुरंत पूछा। मिस्टर सहगल ने थोड़ी झिझक के बाद कहना शुरू किया, जिस जमीन पर कंस्ट्रक्शन होना है उस इलाके में कुछ गुंडों का कब्जा है। उन्हें उस जगह की जरूरत है। पहले भी हमने कई बार उसे खाली करवाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार बात बिगड़ जाती है। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। मिस्टर सहगल ने आगे कहा, अरहान की मौत के बाद वे लोग कुछ समय के लिए शांत हो गए थे। हमें ठीक ठीक नहीं पता कि उसने उनसे क्या बात की थी। बस इतना मालूम है कि जिस दिन वो उन लोगों से मिलकर लौटा था उसी दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था। जोया की आंखों में हल्की नमी आ गई और आयान की मुट्ठियां अपने आप भींच गईं। मिस्टर सहगल ने चिंता भरे स्वर में कहा, अगर वे लोग फिर से वही सब करने लगे, धमकियां देने लगे, तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे पास ना ताकत है ना कोई सहारा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। आयान ने सबकी बातें ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे उसने मन ही मन कोई फैसला कर लिया हो। ये मीटिंग अब सिर्फ एक सामाजिक चर्चा नहीं रही थी, ये एक चुनौती बन चुकी थी। आप मुझे पूरी बात बताइए, मैं इन बच्चों के लिए सच में कुछ करना चाहता हूँ। आयान की आवाज में सख्ती नहीं थी, बल्कि एक गहरी सच्चाई और जिम्मेदारी का एहसास था। मीटिंग अभी चल ही रही थी। कमेटी के सदस्य अपनी अपनी बातें रखते रहे, फाइलें खुलती बंद होती रहीं, लेकिन आयान का ध्यान बार बार अरहान के जिक्र पर अटक जाता था। ठीक एक घंटे बाद मीटिंग खत्म हुई। आयान और जोया दोनों बाहर निकल आए। बाहर आते ही जोया ने चुप्पी तोड़ी। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, उसने धीरे से कहा। जो बताया गया वो ठीक है, मगर अरहान की बुआ और उसकी बेटी, जिसकी शादी हो चुकी थी, कॉलेज में तो अरहान ने कुछ और ही कहा था। आयान वहीं रुक गया। हाँ, उसने गंभीर स्वर में कहा, मुझे भी यही बात खटक रही है। मुझे लगता है हमें पता करना चाहिए कि वो रहता कहाँ था। हमें उसके घर जाकर देखना चाहिए। जोया ने उसकी तरफ देखा। बात तो आपकी ठीक है, उसने कहा, मगर अब तुम मेरे साथ आई, शायद तुम्हें नहीं आना चाहिए था। ये मेरी गलती है, मैं अकेले जाकर जहां देखता, ये सब रिस्क वाला काम लग रहा है। आयान अब समझने लगा था कि मामला सिर्फ अनाथ आश्रम या जमीन का नहीं है। जोया, वो बोला, अब मुझे साफ दिख रहा है कि ये केस बहुत पेचीदा है। आप डर क्यों रहे हैं? जोया ने सीधा सवाल कर दिया। आयान ने एक लंबी सांस ली। डर नहीं रहा, बस ये समझ रहा हूं कि सामने वाला छोटा खिलाड़ी नहीं है। जो कुछ भी हुआ है वो सोची समझी साजिश लगती है। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने फैसला सुनाया। अब तक हमें जितना पता चला है वो काफी है। आगे मैं इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा। मुझे जानना है कि असल में हो क्या रहा है। वे दोनों वहां से निकल पड़े, लेकिन आयान के दिमाग में आज सुनी हर बात घूम रही थी। अरहान, उसकी मौत, गुंडे, जमीन और वो एक्सीडेंट, जो शायद एक्सीडेंट था ही नहीं। वे अपने शहर वापस लौटने के लिए निकल चुके थे। शाम ढल चुकी थी, उनकी फ्लाइट थी और वे एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। अचानक जोया ने रियरव्यू मिरर में देखा। आयान, वो काली गाड़ी, क्या वो हमें फॉलो कर रही है? आयान ने भी शीशे में देखा। संयोग हो सकता है, उसने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। कुछ ही मिनटों में वो गाड़ी और करीब आ गई। फिर अचानक एक तेज हॉर्न, एक भारी ट्रक बगल से आया और सीधा उनकी गाड़ी की तरफ मुड़ गया। आयान, जोया चीख पड़ी। आयान ने तुरंत स्टेयरिंग घुमाई, गाड़ी फिसलती हुई बची, ट्रक कुछ इंच की दूरी से निकल गया। सड़क पर अफरा तफरी मच गई। ये एक्सीडेंट नहीं था, आयान ने दांत भींचते हुए कहा, ये कोशिश थी। अब वो पूरी तरह चौकन्ना हो चुका था। सबसे पहले हमें सुरक्षित घर पहुंचना है, उसने फैसला किया। जोया डर चुकी थी,
लेकिन उसकी आंखों में हिम्मत भी थी। आयान, ये कोई छोटी साजिश नहीं है, है ना?
नहीं, आयान ने गहरी आवाज में कहा, ये बहुत बड़ी साजिश है और किसी को बहुत डर है कि सच बाहर ना आ जाए। उसने एक्सेलरेटर दबाया। अब ये सिर्फ बच्चों की मदद का मामला नहीं रहा था, ये लड़ाई बन चुकी थी और आयान तय कर चुका था, वो पीछे नहीं हटेगा।
गाड़ी तेज रफ्तार से शहर की सड़कों पर बढ़ रही थी। आयान ने एक हाथ से स्टेयरिंग संभाली हुई थी और दूसरे से जोया को सहारा दिया हुआ था। जोया की सांसें अब भी तेज थीं, मगर वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी।
सब ठीक है, आयान ने धीमी लेकिन भरोसे से भरी आवाज में कहा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा।
जोया ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में दर्द था मगर साथ ही एक अजीब सी तसल्ली भी, जैसे आयान की मौजूदगी ही उसे सुरक्षित महसूस करा रही हो। लेकिन आयान के अंदर एक तूफान चल रहा था, उसका दिमाग लगातार सवालों से घिरा हुआ था। आखिर कौन सा सच है, वो जो अनाथ आश्रम से जुड़ा है या वो जो अरहान की मौत के पीछे छिपा है? गुंडे, जमीन, धमकियां, एक्सीडेंट की कोशिश, हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ती जा रही थी। अचानक उसका हाथ अपने आप उसकी छाती पर चला गया, वहीं जहां उसका दिल धड़क रहा था, वही दिल जो कभी अरहान का था। एक पल के लिए आयान की आंखें नम हो गईं। तुम मरकर भी मुझे कुछ कह रहे हो, है ना अरहान? उसने मन ही मन कहा। उसे वो दिन याद आ गया, ऑपरेशन थिएटर की ठंडी रोशनी, डॉक्टरों की गंभीर आवाजें और वो आखिरी फैसला। अरहान का दिल, आयान की जिंदगी। तभी से आयान को लगता था कि वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जी रहा, वो अरहान की अधूरी कहानी भी जी रहा था। जोया ने उसकी हालत भांप ली। आयान, आप ठीक तो हैं? उसने चिंतित होकर पूछा। आयान ने हल्की मुस्कान लाने की कोशिश की। हाँ, उसने कहा, बस कभी कभी लगता है कि ये दिल मुझे किसी सच की तरफ खींच रहा है। जोया चुप हो गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ये मामला जितना बाहर से खतरनाक है, उतना ही अंदर से भी। फ्लाइट बोर्ड हो चुकी थी और वे अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे। बाहर रनवे की लाइटें चमक रही थी, लेकिन प्लेन के अंदर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। आयान चौकन्ना था, जोया भी, मगर फर्क सिर्फ इतना था कि जोया कुछ ज्यादा ही चुप थी। ना सवाल, ना शिकायत, बस आंखों में उलझे हुए ख्याल। आयान ने उसकी खामोशी महसूस की। टेंशन मत लो, उसने हल्के मगर भरोसे वाले लहजे में कहा, सब देख लूंगा मैं। जोया ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ बोली नहीं। फिक्र मत करो, आयान ने धीमी लेकिन भरोसे से भरी आवाज में कहा, इस बार हम अकेले आए थे, आगे से मैं पूरे इंतजाम के साथ आऊंगा। पहले मुझे नहीं पता था कि असल में अरहान के साथ क्या हुआ था, अब समझ रहा हूं। जोया ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में सवाल थे, बहुत सारे सवाल। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो बोली, मैं आपसे एक बात पूछूं? आयान ने सिर हिलाया। जोया ने शब्द चुनते हुए कहा, आपने महसूस किया है कि आपको अरहान की हर चीज खींच रही है, उसकी दुश्मनी, उसकी जिंदगी, उसके अधूरे रिश्ते? आयान कुछ नहीं बोला। जोया की आवाज हल्की सी कांप गई।
उम्मीद करती हूँ ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी।